ओम शांति। बाबा के इस एकांत शांत वातावरण के बीच ज्ञान सरोवर में आप सब ज्ञान और योग की अच्छी अनुभूतियां कर रहे होंगे। बाबा ने वैसे तो हम सबको सहज योग सिखाया है और उस सहज राज योग में हम बाबा को बहुत प्यार से सर्व संबंधों से याद करते हैं। बाबा का नाम रूप गुण कर्तव्य धाम जब संपूर्ण परिचय आत्मा को प्राप्त हो जाता है तो परिचय के साथ संबंध जुटता है और संबंध में अगर स्नेह जुट जाता है तो याद बहुत सहज हो जाती है, क्योंकि उस स्नेह के आधार से अनेक प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। और आत्मा जब प्राप्तियों से संपन्न होती है तो जिससे जो मिलता है उसकी याद स्वतः और नेचुरल रहती है। लौकिक में भी अगर किसी का संबंध हो किसी के साथ लेकिन उस संबंध में स्नेह की कमी हो तो प्राप्तियां भी नहीं होती और उसको कोई याद भी नहीं करता। ऐसे ही हम सब का बाबा के साथ बहुत अटूट प्यार है, स्नेह है, सर्व संबंधों से स्नेह है, इसलिए बाबा को याद भी करते हैं और उनसे आत्मा को जो जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाबा के परिचय में हम सब कहते हैं वो शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान हैं। जब बाबा का ये परिचय हम दूसरों को सुनाते हैं तो जरूर कभी एकांत में बैठ करके उस सागर की लहरों में खुद भी लहराए होंगे, अनुभव किया होगा। जब बाबा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, तो हम बच्चों के पास दुख और अशांति कहाँ से आ सकता है? अगर हमने उस गहन शांति का अनुभव किया है, उस प्यार का अनुभव किया है, उस आनंदमय स्थिति का अनुभव किया है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है, तो हम दूसरों को भी कह सकते हैं कि बाबा इन सब गुणों का सागर है, हम उसके बच्चे हैं। हमारा उनके साथ इतना दिल का संबंध है जो हम उसके सब मास्टर हैं, उसकी अनुभूतियां हैं और उस अनुभूतियों के आधार से अनेक आत्माओं को उसकी हम प्राप्ति भी कराते हैं। बाबा से जो कुछ हम लेते हैं वो हम अन्य आत्माओं को दे रहे हैं। हमारे संकल्पों से, हमारे पवित्र आभा मंडल से, पवित्र विचारों से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन मिलते हैं, शक्ति मिलती है। तो योग जो बाबा ने हम सबको सिखाया है वो इतना सहज योग है जिसको हम सब चलते फिरते कर्म करते बाबा की ही स्मृति में रहकर कर्मयोगी जीवन जी रहे हैं। हम योग लगाने वाले योगी नहीं हैं। कोई कहे हम 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटे बाबा को याद करते हैं तो बाबा कभी कभी बहुत प्यार से पूछते हैं बाकी किसको याद करते हो? अगर 2 घंटे तो मुझे याद करते हो तो 22 घंटे कहाँ रहते हो? अगर बाबा से ही सब संबंध है तो जरूर मैं समझता हूँ हर कर्म में खाते पीते चलते फिरते कोई भी कर्म करते बाबा मेरा साथी है, उसके साथ हम कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, उसकी अनुभूतियां करते हैं। तो उस गहन अनुभूति के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? क्यों योग लगाने में कईयों को मेहनत लगती है? पुराने पुराने बाबा के बच्चे भी कई बार कहते हैं, भाई साहब योग नहीं लगता, योग का अनुभव नहीं होता, बैठता हूं मन भटक जाता है। कोई कहते हैं, हम कितना समय एकाग्र रहें, मन और बुद्धि को एकाग्रता कितनी होनी चाहिए, रूह रिहान कितना समय करें, ज्ञान का चित कितना समय चिंतन करें, बहुत सारे प्रश्न लेकर के आते हैं। जहां पर भी जाओ बाबा के पुराने पुराने बच्चे जब ये बात पूछते हैं कि योग में बहुत मेहनत है, योग नहीं लगता, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि योग क्या है आखिर। बाबा कई बार कह देते, बच्चे योग शब्द तो हठ योगियों का छोड़ दो, तो मुझे याद करो। और याद तो प्यार के आधार से आती है, प्राप्तियों के आधार से आती है। लौकिक में संबंधों में किसी को कोई याद करता है तो उसके लिए कोई मेहनत करता है क्या? माला लेता है, मूर्ति लेता है, उसका नाम जपता है, क्या करता है? एक संबंध है, संबंध के आधार से जो कुछ पालना प्राप्तियां मिली हैं, हुई हैं, उसके आधार से उसकी याद नेचुरल रहती है। उसका नाम याद रहता है, उसका रूप याद रहता है, उसके गुण याद आते हैं। कोई भी विशेषता है, किसी तरह से हमें सहयोग दिया है, कोई भी काम होगा, भाई फलाने ने बड़ी मदद की, बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छा उसका स्वभाव है, उसके संस्कार है, तो ये भी तो एक याद है कि नहीं है। उसके लिए कोई हम स्पेशल पुरस्कार तो नहीं करते। कलयुग के अंदर बाबा ने अपने बच्चों को सबसे बड़ी प्राप्ति कराई, जो हमारे अपने सत्य स्वरूप की पहचान दी। हम अपने को नहीं पहचानते थे, मैं कौन हूं, इसी पहेली को हम लोगों ने हल नहीं कर पाया। अपने अपने नाम का प्रचार करते रहे, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। अगर कोई ने कोई पोस्ट पद प्राप्त कर लिया, पद का नशा हो गया, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं जज हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं किसान हूं, उसका एक रहता है कि मैं ये कर्म के आधार से वो अपने आप को वही कहला रहा है। तो बाबा ने जो हम सबको पहचान दी कि आप कौन हैं, और जिसने इस पहचान को यथार्थ समझ लिया वो योग की बहुत गहरी अनुभूति कर सकता है। तो आप सबने तो अपने आप को पहचाना है ना, पहचाना है कि नहीं? सभी अपने स्वरूप में स्थित रहते हो, कितना समय स्थित रहते हो? इस कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाली, इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से कर्म करने वाली, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। अभ्यास करती माताएं, सुन रही हो कि थोड़ा सुस्ती आ रही है? जवाब देना मेरे को, ठीक है ना, सुनाई दे रहा ना सबको? हाँ, पता नहीं चलता, सब ऐसे बैठे हैं, मुंह में भी पट्टी बंधी हुई है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे नहीं, क्लास कराते कराते आप परमधाम में चले जाना, जागृत अवस्था में रहना, ठीक है? हम बीच बीच में पूछेंगे इसलिए। तो जिस आत्मा ने स्व स्वरूप को पहचाना, अनुभव करना, अभी मैं बोलता जाता हूं, इस अनुभव में बैठना, मैं आत्मा जो हूं जैसे हूं, और इस शरीर के अंदर जहां पर भी हूं, बाबा ने हम सबको पहचान दी, बच्चे आत्मा का निवास स्थान ये अकाल तख्त, ये भ्रकुटी है, यहां पर आप लोग तिलक लगाते हो, यहां पर ही हम सब जब भक्ति पूजा पाठ भी करते हैं तो यहां ही टीका देते हैं, और जब किसी से बात की जाती है, किसी को देखा जाता है, तो कोई ऐसे झुक करके नीचे से बात करे, देख करके मजा नहीं आएगा, देखते समय भी उसके भ्रकुटी आसन की तरफ ध्यान जाता है। तो जब हम अपने स्व स्वरूप में स्थित रहते हैं और उस स्वस्वरूप में स्थित होकर के कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, मेरा स्वधर्म शांति प्रेम पवित्रता है, और उस स्वधर्म में स्थित होकर के मैं इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं करावनहार हूँ, ये कर्म इंद्रियां करनहार है। ये बहुत अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय से आत्मा इस देह को लेते लेते देहमान में आ गई, बॉडी कॉन्शियस हो गई। वैसे तो 84 जन्म ही हम इस शरीर में चक्र में आए हैं, आप समझो एक दो जन्म भी कोई एक साथ रहता है, एक जन्म में भी कोई एक दो साल चार साल साथ रहता है तो उसके संग का रंग लगता है। कोई ऐसे साथी दो चार साल एक साथ बैठते हैं उठते हैं रहते हैं तो उसके जो स्वभाव हैं, उसका जो बोलचाल है, उसका जो खान पान है, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। और आत्मा इतना समय परमधाम घर से सृष्टि मंच पर आई, आते ही उसको शरीर मिला, उस समय भले शरीर सतो प्रधान था, आत्मा मालिक बन करके इस कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के खेल खेला, आधा कल्प तक उस शरीर में रही लेकिन शरीर के भान में नहीं आई, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर लेती हूं, मैं शरीर छोड़ती हूं, ये स्मृति रही। लेकिन संग का रंग लगा, जिसके संग में हम रहते आए तो उसका संग लग गया, और उस संग ने धीरे धीरे आत्माओं की जो पवित्रता थी, जो उसकी क्वालिटी थी, उसमें गिरावट लाई। संग का रंग लगा, किसका संग लगा? शरीर का संग लगा। और आत्मा को शरीर के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। अगर शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर कोई का बिल्कुल रोगी हो जाए, ब्रेन काम न कर रहा हो, हार्ट काम न कर रहा हो, ये हाथ पैर काम न कर रहे हो, तो आत्मा कितनी भी बलवान क्यों न हो शरीर के अधीन हो जाती है। इसलिए शरीर के साथ रहते रहते आत्मा उसके अधीन हो गई, और अधीन होने के कारण द्वापर युग शुरू हुआ, आत्मा अपने स्वरूप को भूली और देहमान जिसने आत्मा को भी अपने अधीन कर लिया, मन बुद्धि जो उसकी मूल शक्तियां थी वो भी उनके कंट्रोल में आ गई। चलते चलते सब विकार प्रवेश हुए, अनेक आदतें बनी, पुराने बुरा विकारी पति संस्कार बन गए, और फिर जब अति में चली गई आत्मा, बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस हो गई, दुख शुरू हो गया, पाप शुरू हो गए, पुकारना शुरू हो गया, भगवान मदद करो, सहयोग दो, इन दुखों से मुक्त कर दो, तब बाबा आकर के हमें अपनी पहचान देते हैं, आत्मा की पहचान देते हैं, मूल तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो, तुम किस लिए आए हो, और उस पहचान दे करके कहते बच्चे अब इसका अभ्यास करो। इस देहभान को गलाने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं गलता, छोटा सा भी कोई बात हो जाए, शरीर में कहीं दर्द हो, दुख हो, तकलीफ हो, फट से खींच जाता, भूल जाता मैं आत्मा हूं, या मेरा कोई नाम ले ले, या मेरे नाम से कोई इधर उधर कुछ उल्टा कर ले, बदनाम करे, तो भी एकदम बॉडी कॉन्शियस आ जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे से ऐसे करते, इतना देहमान पक्का हो गया। अब हम अभ्यास करें, मैं आत्मा मालिक हूं, मैं आत्मा राजा हूं, ये मन बुद्धि संस्कार ये कर्म इंद्रियां मेरी हैं, इनका मैं कंट्रोलर हूं, ये मेरे कंट्रोल में मेरे अधिकार में रहनी चाहिए। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे सहज नहीं है इस कर्म इंद्रियों को जीत लेना। और जब तक हमने इस कर्म इंद्रियों को नहीं जीत पाया, जब तक इस देहभान को नहीं गलाया, तब तक योग की गहरी अनुभूति नहीं होती। गहरी अनुभूति के लिए अपने स्वस्वरूप में स्थित रहना, इस शरीर से इस भान से डिटैच हो जाना, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, जब वो चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते उस स्वरूप की स्मृति बन जाती है, तब परमात्मा जो है जैसा है, सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, और उससे हम आत्मा कनेक्ट हुई बुद्धि से, सिर्फ प्यार से बाबा कहा, योग कनेक्ट हुआ और उसकी शक्तियां उस हमारे अंदर फ्लो होने लगी, आने लगी। करते होंगे अभ्यास इसका, इसका अभ्यास जितना आप अंतर्मुखी रहेंगे उतना कर सकेंगे। अगर बाह्य मुक्ता के रस हैं, बाह्य मुक्ता के रस वाले कभी भी योग की गहरी अनुभूति नहीं कर सकते। क्यों? उनका बोलने का रस है, उनका सुनने का रस है, उनका खाने पीने का रस है, वो कर्मेंद्रियों के इतने अधीन है, जो आत्मा जब बाबा की याद में बैठती है तो वो चीजें अपनी तरफ खींचती हैं, और बुद्धि एकाग्र होने की बजाय वो भटक जाती है। क्योंकि योग के लिए एकाग्रता तो जरूरी है, अगर एकाग्रता नहीं है और आप बाबा की याद में बाबा बाबा कह रहे हो, अंदर अंदर वृत्तियां अपना काम करती हैं, इधर भटकती हैं, उधर भटकती हैं, उसमें जाती, कोई के नाम रूप से शरीर से प्यार हो गया वहां भटक जाएंगी, कोई वस्तु से प्यार हो गया, कोई व्यक्ति से प्यार हो गया, कोई के स्वभाव संस्कार अच्छे लगने लगे, उधर भटक गई, या कोई से आपने झगड़ा कर लिया, नफरत कर ली, घृणा कर ली, वैर कर लिया, अच्छा नहीं लगता व्यक्ति, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा। दोनों प्रकार की आत्माएं, चाहे वो बहुत गुणवान है, बहुत अच्छे स्नेही सहयोगी मददगार है, विशेष हैं, उन पर अगर आत्मा खिंच गई, प्रभावित हो गई, तो वो अपनी तरफ खींचती है, और अगर कोई अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है, कोई ऐसे लगता है कि ये विघ्न रूप है, ये नेगेटिव है, उसको उसके बारे में बहुत कुछ संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों तरफ से खिंचाव होता है। इसलिए बाबा भी, हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे कोई भी नया हिसाब किताब अभी नहीं बनाना, जो तुम्हारा पुराना बना था वो तो चुप तो करो, कैसे भी, चाहे भोग करके करो, चाहे योग करके करो, दो ही रास्ते हैं, देखना, ध्यान देना। जो कुछ हमने पिछले जन्मों में अज्ञान के वश किया है, चाहे अच्छा किया है चाहे बुरा किया है, जो कुछ किया है, उसको इस अंतिम जन्म में जब वापस जाने का समय है, तब उस हिसाब किताब को, उस हिसाब की किताब को समाप्त करना पड़ेगा। और अगर नहीं समाप्त किया तो बाबा के अंत समय में साथ तो मैं ले जाऊंगा सबको, लेकिन उसके लिए फिर धर्मराजपुरी है, क्रॉस करना पड़ेगा, हिसाब किताब चुक तो करने पड़ेंगे, पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत भोगना के रूप में कष्ट आएंगे, वो पीड़ा बहुत दर्दनाक है। इसलिए तुम बच्चे, जब ज्ञान मिल गया है तो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे, श्रेष्ठ कर्म करके, अपने स्वधर्म में स्थित होकर के, बाबा से शक्ति लेकर के, अपने आप को बहुत स्वच्छ और पवित्र बना लो। जो इसमें मिक्स हो गया है, जैसे कोई सोने के अंदर, जो हमारा भारत का सोना गाया हुआ 24 कैरेट बिल्कुल प्योर शुद्ध, उसके अंदर अलाय मिक्स हो गई, कुछ न कुछ मिक्स किया, तांबा मिक्स किया, चांदी मिक्स किया, लोहा मिक्स कर दिया, मिक्स होते होते अभी 9 कैरेट रह गया, बिल्कुल कम कीमत वाला सोना रह गया। अब उसको अगर कोई जवहरी को दिया जाए, तो जवहरी उस सोने को प्योर बनाने के लिए क्या करेगा, तेज आग के अंदर, छोटी सी भट्टी के अंदर डाल करके उसको पिघलाएगा पहले, और जब वो पिघल करके एकदम बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, तो उसकी जो मैल जो मिक्स हुआ है वो अलग हो जाएगी, और फिर वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएगा। जब वो ओरिजिनल स्वरूप में आएगा, फिर उसको कोई जेवर बनाना है, कोई चीज बनाना है, तो जितनी कैरेट का बनाना है उतना उसमें प्योर रखेगा, बाकी मिला लेगा। बाबा इस समय संगम युग पर हरेक आत्मा को उस सत्तो प्रधानता की, रियल गोल्ड की स्टेज तक ले जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, कहां तक ले जाना चाहते हैं? आत्मा जो बिल्कुल अनादि स्वरूप में प्योर थी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं थी, बिल्कुल प्योर स्वच्छ निर्मल, कोई भी प्रकार का आसुरी संस्कार, कोई भी प्रकार के देहमान वाला संस्कार उसके अंदर नहीं था, और सत्ययुग त्रेता तक कायम रहा, लेकिन धीरे धीरे इसमें मिक्स होते होते लास्ट में आकर के एकदम काला कोयला बन गई हो। अब उसको बाबा प्योर करना चाहता है योग से, कि योग की अग्नि है, योग की भट्टी है, और इस योग की भट्टी में आत्मा को ऐसे बिठा दो जो इसकी जो मिक्स हुआ है वो सब ऐसे निकल जाए। तो ऐसे अभ्यास करते हो तपस्या, कैसे चलता है योग? ठीक है, करते तो हैं रोज, बाबा को ही तो याद करते, कई कहते हैं बाबा को ही तो याद करते हैं, बाबा के ही तो हैं और किसी को थोड़ी याद कर रहे हैं हम। लेकिन बाबा कहता नहीं बच्चे, कुछ समय के लिए भी, पूरा समय चलो ठीक है चलते फिरते करो, कुछ समय ऐसी एकाग्रता के साथ मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, अपने आसन पर बैठो और उसी स्वरूप में बाबा को देखो और बाबा की शक्तियों का अनुभव करो। वो शक्तियां जैसे कोई आजकल शारीरिक बीमारी के लिए ऑपरेशन करते हैं तो लेजर किरणों से भी करते हैं, चीर फाड़ ज्यादा नहीं करते, लेजर किरणें ऐसी पावरफुल डाल करके अंदर की गांठों को, अंदर की बीमारी को ठीक कर देते हैं। बाबा भी अपने बच्चों पर वो किरणें लेजर की, पवित्रता की, शांति की, स्नेह की ऐसी डाल देते हैं, लेकिन डालते उस पर हैं जो बिल्कुल स्थिर है, एकाग्र है। हलचल है तो किरणें फिर काम नहीं करती। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर योग की गहन अनुभूति करनी है तो अंतर्मुखता की बहुत जरूरत है। जो रस आकर्षण कर रहे हैं उन रसों से आपको वैराग्य चाहिए। अगर कोई भी रस आकर्षित कर रहा है कलयुग का, खाने का, पीने का, घूमने का, देखने का, सुनने का, बोलने का, तो वो रस बाहिमुखता है। अब वो रस इस समय कलयुग के अंत में बाबा कहता बच्चे बहुत कर लिया, बहुत 84 जन्मों में मौज कर लिया, अब थोड़ी समय के लिए तुम अपना समय मेरे को दे दो। जब समय मिले अपने आसन पर बैठो, ऐसे एकांत में बैठ जाओ। संगठन में मिलता है समय, ठीक है, संगठन की वाइब्रेशन, अगर योगियों का संगठन है तो वो योग ठीक लगेगा। अगर एक दो भी ऐसे सो गया, एक दो ऐसे उधर के उधर के संकल्प चला रहा है तो साथ वाले का भी योग टूट जाएगा। 10-15-20 अच्छे योगी, अच्छे इस योग के गहराई को समझने वाले अगर संगठित होकर के बैठते हैं तो उसका एक प्रवाह जो है, उसके जो वाइब्रेशन है वो पूरे विश्व का परिवर्तन करते हैं, प्रकृति का परिवर्तन करते हैं, वायुमंडल का परिवर्तन करते हैं। कई आत्माएं जो दुखी अशांत हैं उनको भी सहयोग देते हैं, मदद करते हैं। इसलिए सब कुछ समय इस एकाग्रता को बढ़ाओ और इस एकाग्रता के आधार से स्थिरता आती है। तो जितना समय हम अंतर्मुखी रहते हैं, अंतर्मुखी का अर्थ समझते हैं ना सब, अंतर्मुखी माना अंदर का जो मुख है, कौन सा, मन, वो बहुत कुछ बोलता है। मुख का मौन तो हम रख देते हैं, वाणी को तो हम विराम दे देते हैं, नहीं बोलना है तो नहीं बोलते, कहते भट्टी के अंदर आए हो ना, मुख का मौन जरूर रखना, मुख शांत रखना, बोलना नहीं, ज्यादा आवाज में नहीं आना, हलचल में नहीं आना, इस पर तो ध्यान है, बहुतों का है। लेकिन मन के अंदर जो इतना चलता रहता है, बोलता रहता अंदर अंदर, ये ऐसे हो रहा, वैसे अंदर सोचता है, जब उस मन के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाए, वो मुख बोल दे, बंद हो जाए, तब कहेंगे अंतर्मुखी है। इसलिए कहते हैं मन का मौन रखो, मन का बोलना शांत हो जाए, उसका जो अंदर अंदर संकल्प विकल्प ये वो बहुत सारे विचार आते हैं उसको विराम दो। अगर योग के गहरे अनुभव करने हैं तो जब वो शांत हो जाएगा, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएगा, संकल्प शून्य नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं सोचना हम तो निढ़ संकल्प हो जाए यही योग है, वो तो एक गुमसुम वाला योग हो जाएगा। निढ़ संकल्प समाधि है ही नहीं हमारी, संकल्प तो पूरा कल्प चलते हैं, लेकिन संकल्प की क्वालिटी, उसकी जो बहुत विस्तार है, जो बह रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं, भटकते नहीं है, अपने स्वरूप का चिंतन है, बाबा के स्वरूप का चिंतन है, गुणों का चिंतन है, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इतने सारे समान बाबा ने दिए हैं इसलिए देता है। बच्चे मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का बच्चा, ऐसा श्रेष्ठ हूँ, इतना महान हूँ, वो संकल्प में आत्मा रहे, ऐसे नहीं वो संकल्प भी शांत कर दो, संकल्प करो, जरूर करो, अच्छे अच्छे करो। संकल्प एक वाहन है आपका, मन आत्मा का वाहन है, और इस मन के वाहन से ही हमें यात्रा करनी है। इसके बिना तो ना आप सूक्ष्म वतन जा सकते हो, ना मूल वतन जा सकते हो, ना अपने स्थान से मधुबन आ सकते हो। अपने स्थान से मधुबन आने के लिए अपने स्थान पर रहो और मधुबन की सैर करो, बाबा के चार धाम घूम करके आ जाओ। कैसे आओगे भाई? टिकट लेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, बस लेंगे, टैक्सी लेंगे, कैसे आएंगे? मन और बुद्धि का ही विमान है हमारे पास। अगर आत्मा के कंट्रोल में है वो, उसको हमने अच्छा प्यार से भोजन खिलाया है, अच्छे विचार दिए हैं, अच्छी तरह से उसको समझा के रखा है, प्यार प्रेम से चलाया है, तो अपने स्थान पर बैठे हैं, चलो मधुबन के चार धाम की यात्रा करके आते हैं। बाबा की कुटिया है, बाबा का कमरा है, बाबा का हिस्ट्री हाल है, बाबा ने जहां संपूर्णता को प्राप्त करके लाइट हाउस बने, शांति स्तंभ है, चार धाम घूम के आते हैं। कौन गया? कौन गया? मन गया ना। तो मन अगर हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में, अच्छे अच्छे विचार हम करते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छी यात्रा कराता है जहां चाहिए। आप एक सेकेंड में चलो अव्यक्त वतन में चलते हैं, अव्यक्त वतन से अभी मूल वतन में चलते हैं, अभी थोड़ा समय वैकुंठ की सैर करके आते हैं, अभी थोड़ा समय भक्तों के पास चले जाते हैं। कहाँ भक्त बेचारे लाइनों में खड़े होंगे, कितने धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना देवियों के क्षण भर के दर्शन के लिए क्या क्या करते हैं। कल मैं एक जगह गया था, बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, मैं तो कह एक मिनट दर्शन करके चलो आप, वैसे मैं बहुत कम जाता हूँ, बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है मिलिट्री वालों का, जैसलमेर के एकदम कोने में बॉर्डर पर। और क्यों इतनी मान्यता है? मिलिट्री वाले सब पूजा भी करते हैं, उसको संभालते हैं वहां। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी उस समय 71 में, तो कुछ बॉम्ब्स गिरे भारत के ऊपर, और वो देवी ने उस स्थान पर कोई बॉम्ब फूटने नहीं दिया, वो जागृत जिंदा है बॉम्ब, और वो सब उस मंदिर में रखे हुए हैं। मिलिट्री वालों ने उनको नष्ट नहीं किया, लेकिन वो बॉम्ब जो उन्होंने पाकिस्तान से इधर फेंके होंगे, वो सब उस मंदिर के अंदर सजा के देवी के आगे मंदिर में रखे हैं। देवी ने रक्षा की, देवी ने मदद की, इतनी उसकी मान्यता है, वो सिद्धि प्राप्त जैसे मंदिर है। और बहुत प्यार से मिलिट्री वाले उसकी पूजा करते हैं, संभाल करते हैं, तो मुझे दिखाने के लिए ले गए, देखो चल के। तो हम लोगों को तो बहुत परिचित हैं, लोग जानते हैं मिलिट्री वाले, दिखाया, अंदर ले गए, दिखाया सब कुछ, लेकिन मैं देख रहा हूँ देखने वालों की लंबी लंबी लाइनें, दर्शन करने के लिए क्या बेचारे मेहनत करते, एक मिनट भी खड़े नहीं हो पाते, इतनी भीड़ होती है। तो ऐसा बाबा ने हम लोगों को बनाया, कौन है देवियां, कौन है ये देवताएं जिनके लिए इतनी सब लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, एक क्षण के दर्शन के लिए कितना लाइनों में खड़े हुए हैं। तो कभी कभी अपने मंदिर में चले जाया करो, जाते हो भाई, जाओ अपने साक्षात्कार मूर्ति में स्थित होकर के, बाबा ने इतना पूज्य बनाया, ये पवित्रता की शक्ति कमाल कर रही है ना, और कौन सी शक्ति है इनके पास? ब्यूटी की शक्ति है, पवित्र विचारों की शक्ति है, वो शुद्ध संकल्प की शक्ति है, जो आज इतना पूजनीय बना करके इतनी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करा रही है, इतने लोगों की रक्षा कर रही है, वो सुरक्षा कवच देवियां बनी हुई है। उसी श्रद्धा से लोग पूछते हैं। तो अपने जब आसन पर बैठते हो, ग्रहकुटी आसन पर, तो अपने मन बुद्धि के विमान से कभी किसी मंदिर में चले जाओ, कभी भक्तों को साक्षात्कार करा दो, कभी अनुभव करो कितने भक्त मुझसे, आत्माओं से अपनी मनोकामनाएं पूरी कर। योग क्या है? हम समझते हैं योग माना बस आत्मा समझ के बैठ जाऊं मैं। वैरायटी करो, जिस प्रकार के संकल्प करना चाहो करके कभी कोई सामान लेकर के योग करो, कोई वैरायटी और नवीनता से करोगे तो कभी भी बोर नहीं होगे। हमारे कई भाई बहने कैसे योग करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति का सागर हूं और शांति धाम में रहता हूं। यही योग है क्या? यही योग बाबा ने सिखाया है। इतना रमणीकता से बाबा से प्यार से बातें करो, बाबा कहाँ पर किस लाइफ में थे, कैसी जीवन थी, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कितना भटकते थे, कितने धक्के खाते थे, आपने सबसे छुड़ा दिया, शुक्रिया बाबा आपका। इतना प्यार अंदर से मर्ज हो जो बाबा कहता तुम्हारे नयन ही एकदम गीले हो जाए। इतना बाबा ने बच्चों को बचाया है कलयुग के अंदर भटकने से, धक्के खाने से, इधर उधर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, सारी शक्तियां नष्ट कर रहे हैं, और बाबा ने अपने बच्चों को अपनी गोदी में ले लिया। आओ बच्चे, अब ऐसे बाबा को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, शायद विधि यथार्थ नहीं आती है। इसलिए बहुत प्यार से आत्मा समझ करके मन को इधर उधर के विचारों से मौन कर दो, जो हमारे काम के विचार नहीं है, जिससे हमें कोई प्राप्ति नहीं है, लेना देना नहीं है, वही संकल्प अंदर अंदर घोट रहे हैं, चल रहे हैं, उनको स्टॉप करो। और अच्छे अच्छे संकल्प जो बाबा ने दिए हैं उनको बार बार रिवाइज करो, उसका स्वरूप बन जाओ, योग के अच्छे अनुभव होने लगेंगे। इतनी योग की मस्ती चढ़ेगी, आनंद आएगा, जो लगेगा हम तो खोए हुए हैं बाबा के प्यार में। तो इसलिए अंतर्मुखता से एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता भी शून्यता नहीं है। कई सोचते एकाग्रता माना एकदम शून्य होकर के बैठ जाओ, ये एकाग्रता है क्या? एकाग्रता माना जिस लक्ष्य की ओर आप हैं उसमें स्थिर रहो, ऐसे नहीं लक्ष्य को ही भूल जाओ और मैं तो एकाग्रचित हूं। जो लक्ष्य लेकर के आप बैठे हैं उसकी अनुभूति में खो जाओ, उसके लिए संकल्प करो, उसके लिए विचार चलाओ, उस स्थिति में बैठो, एकाग्रचित हो जाओ। एकाग्रता से स्थिरता आती है, हलचल समाप्त हो जाती है, और जब हलचल समाप्त हो जाती है तो स्वच्छता आती है, स्वच्छता, और स्वच्छता में स्पष्टता आती है। मैं समझता हूं इस बात को थोड़ा गहराई से समझोगे। आज अगर मान लो इधर उधर पानी बह रहा है, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, धीरे धीरे जब उसमें हलचल समाप्त होती तो स्थिर होता है, और जब स्थिर होता है जो मिट्टी धूल कण उसके साथ आए हैं मैला है, वो धीरे 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 वो अंदर बैठ जाती है, उसमें स्वच्छता आ जाती है, जिसको हम निर्मलता कहते हैं। और उस स्वच्छता में कितना भी गहरा पानी हो, 50 फुट 60 फुट 100 फुट, अगर स्वच्छ है, स्पष्ट दिखाई देता उसके अंदर क्या है, आज व्यक्ति अपने आप को महसूस नहीं कर पाता। मैं जो हूं जैसा हूं अपने को ही नहीं अनुभव कर पाता कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, वैर है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, कहां पर आत्मा भटकी हुई है, लटकी हुई है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसकी हलचल समाप्त नहीं होती, वो स्थिर नहीं हो पाता। और जिस दिन आप अपने आप को स्थिर कर लेंगे उतना पता चलेगा, और वो सब संस्कार जो धीरे धीरे उछल रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो शांत, फिर अपने स्वरूप को देखो, बाबा को देखो, बाबा भी स्पष्ट दिखाई देगा, वो जो है जैसा है, इन आंखों से देखने की चीज तो है ही नहीं, अब बुद्धि के नेत्र से अनुभव होगा, वो एक लाइट, एक माइट स्वरूप शक्ति है, और वो शक्ति परमात्मा की मुझ आत्मा में समानता के रूप में अनुभव होती है। ऐसे नहीं वो बहुत बड़ा है मैं नीचे हूं, कई लोग भगवान को कहते अरे वो तो अखंड ज्योति तत्व है, और बाबा कहता बच्चे इस स्वरूप से मुझे याद नहीं करना, मैं जलाने वाला थोड़ी हूं किसी को, लेकिन जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूं, केवल पवित्रता की स्टेज में, गुणों की स्टेज में उसमें भरपूरता है, और आत्मा पार्ट बजाते बजाते देह के संबंध में आते आते उसकी वो क्वालिटीज में गिरावट आ गई है। अब उस गिरावट को पूरा करना है, वही भरना है बाबा से लेकर के योग के अंदर। जब हम अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं और बाबा को देखते, वही सर्वशक्तियां वो हमारे अंदर आने लगती हैं, जैसे वो भरपूर हो जाती है। जो आत्मा के निज सात गुण हैं, वो सातों गुण जब संपूर्णता को प्राप्त होते हैं तो कहते आत्मा सतो प्रधान है, सतो गुणी है। अभी तमोगुणी हो गई, तम का अंधकार का उसमें छाया आ गई, प्रकाश गायब हो गया पवित्रता का। जितनी अपवित्र आत्मा बन गई वो तमो बन गई, तमो प्रधान बन गई। कल बाबा कह रहे थे अभी तक कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो, अभी तक भी कोई तमो प्रधान ही है। माना उन विकारों को उन्होंने जीत नहीं पाया। कितना हमारी स्टेज सतो से, रजो से, सतो सतो से सतो प्रधान तक पहुंची है, हमें चेक करना चाहिए। अगर अभी भी वो तमो के लक्षण हैं, इंद्रियों में चंचलताएं हैं, क्रोध आता है, शीतलता का अनुभव नहीं होता, सरलता का अनुभव नहीं होता, मिलनसारिता का अनुभव नहीं होता, रूहानियत नहीं, दिव्यता नहीं, अलौकिकता नहीं आई, तो बाबा के संग रहने का क्या फायदा। योग करने का फायदा ही तब है जब बाबा के अंदर जो शक्तियां हैं वो मेरे जीवन में दिखाई देने लगे। यही तो योग है। जिसके साथ रहते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं उनके साथ, तो वो सब क्वालिटीज, जो सब विशेषताएं बाबा की हैं, वो मेरे अंदर आ जाए। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा बहुत शुद्ध स्वरूप हूं। आप देखो उस चलन में, चेहरे में, बातों में, संग में सबको अनुभव होने लगेगा। ये कहेंगे संस्कार शुद्धिकरण। संस्कार न गलते हैं, न मरते हैं, न मिटते हैं, संस्कार आत्मा के साथ साथ चलते हैं। सतयुग से लेकर के हम उन संस्कारों के साथ ही आए हैं। हमारे दिव्य संस्कार थे तो अच्छे घर में जन्म होता था, अदिव्य बने, अपवित्रता आई तो जन्म भी ऐसे होने लगे, और गिरावट आई, अभी कहां से कहां पहुंचा दिया। बाबा के तस संस्कारों से शरीर का निर्माण होता है। जिस प्रकार के संस्कार आत्मा ने इस समय बनाए, उसी प्रकार जब शरीर छोड़कर के अगला शरीर लेती है, तो उन्हीं संस्कारों के प्रभाव के अनुसार उस शरीर में क्वालिटीज आती है। इसलिए ध्यान देना, संगम युग पर योग के द्वारा हम अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करते हैं। अगर संस्कार शुद्ध नहीं हो रहे और हम कह रहे हम 8 घंटा योग करते, हम 6 घंटा योग करते, हम निरंतर योग करते, हमारा गुस्सा नहीं जा रहा है, हमारा चिड़चिड़ापन नहीं जा रहा है, हमारी वासनाएं समाप्त नहीं हो रही, हमारी वाणी में नम्रता और मधुरता दिखाई नहीं दे रही, हमारे चलने में वही अहंकार रोग दिखाई दे रहा है, क्या हमने परिवर्तन किया, कहां शुद्धिकरण हुआ। शुद्धिकरण के कुछ लक्षण तो दिखाई देने चाहिए। तो योग के अगर हमने गहरे अनुभव कर लिए, अपने स्वरूप को पहचाना, अपने स्वधर्म को पहचाना, अपने स्वदेश को पहचाना, और स्वपिता के साथ संबंध जोड़ा, स्वपिता की क्वालिटी हमारे जीवन में आ जानी चाहिए। यही योग है, यही योग की गहराई है कि जो बाबा जैसा है वही संस्कार, वही दिव्यताएं, वही रूहानियत, वही अलौकिकता मेरे जीवन में आ जाए। तभी तो कनेक्शन जोड़ने का, उसके साथ कंबाइंड रहने का फायदा है। हम कहते हैं हम भगवान के साथ कंबाइंड रहते हैं, बार बार कहते हैं कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। शरीर से तो कंबाइंड हो नहीं सकते, उसके पास शरीर ही नहीं है, कैसे कंबाइंड होते हैं भाई, कैसे कंबाइंड होंगे बाबा के। बाबा की जो प्योर लाइट है, पवित्रता है, आत्मा जब उस स्वरूप में स्थित होगी कि मैं एक पवित्र स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, एक लाइट हूं, तो लाइट और लाइट दोनों मिक्स हो सकती हैं, साथ हो सकते, कंबाइंड रह सकती है, लाइट कंबाइंड रह सकती है, वो शक्तियां, वो गुण कंबाइंड रह सकते हैं। और अगर बाबा कंबाइंड है मेरे साथ है, आज देखो गुलजार दादी के साथ बाबा थे, कंबाइंड ही थे, आते थे तभी भी दिखाई देता था, और नहीं आते थे तभी भी दादी के चेहरे से, दादी के बोलने से, उनकी दृष्टि से अनुभव होता था जैसे बाबा है साथ में। वो सारी क्वालिटी जो बाबा इनके साथ रहे, कंबाइंड रहे, वो उनके सोल के अंदर प्रवेश हो गई, जैसे उनके बोलने में मधुरता आ गई, देखने में दिव्यता आ गई, वो चेहरे पर रुहाब और रूहानियत आ गई, सब व्यवहार में शुद्धता आ गई, बोल में मधुरता आ गई, वो सब संग का रंग लग गया। यही तो योग है, यही योगी जीवन है। सब ने देखा, गुलजार दादी को भी देखा, प्रकाशमय दादी को कईयों ने देखा, जानकी दादी जी को देखा, एकदम बाबा के साथ रहते रहते, कंबाइंड रहते रहते, वो बाबा की क्वालिटीज को धारण कर लिया और उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से अनुभव होने लगा। हम सभी भी बाबा के साथ रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, उनके स्वरूप में कंबाइंड है, उनके गुणों में कंबाइंड है, अपने आप उस संग का रंग लगना चाहिए। और जितने हमारे अंदर अशुद्धियां आई हैं, इम्प्योरिटी आई है, वो संग से आई है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आत्मा बिल्कुल शुद्ध पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाएगी, और बाबा ऐसा ही बनाना चाहता है। इसीलिए रोज मुरली में कहता, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। वो करते भी हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन विधि यथार्थ न होने के कारण कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, फिर कहते योग नहीं लगता। योग के लिए तीन चीजें और सुनाता हूं। एक तो सबकी दुआएं चाहिए। अगर कोई भी आत्मा की किसी भी रूप में मुझे बद्दुआएं मिल रही हैं, मेरे एक्टिविटी से, मेरे बोलचाल से, मेरे किसी कर्म से, कोई आत्मा अपसेट होके, परेशान होकर के, डिस्टर्ब होकर के मुझे बद्दुआ दे रही है और मैं योग कर रहा हूं, योग लगेगा? तो बद्दुआएं आपको बार बार अंदर अंदर डिस्टर्ब करेंगे, आपकी सारी खुशी को गायब कर देंगे, योग लगेगा ही नहीं। इसलिए दुआएं एक ऐसा आधार है योग का, कि अगर मुझे आत्मा को सबकी दुआएं मिली हुई हैं, तो आत्मा एकदम लाइट है, दूसरी क्वालिटी हल्की हो जाएगी। कोई भी चीज को ऊपर ले जाने के लिए हल्कापन चाहिए। किसी भी प्रकार का बोझ अगर आप लेकर के बैठे हैं, योग नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहता, बच्चे जिसको तुमने समझा ये मेरा है, अभी तो मुझे कहो ये तेरा है, बोझ हल्के करो। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जवाबदारियां हैं, मेरा बिजनेस है, मेरी पोस्ट है। बाबा कहता, जहां जहां तेरा मेरा पे मेरा है, वही फेरा है, वही योग लगने नहीं देता। पहले दुआएं लो, और दुआएं लेते लेते अपने आप को हल्का करो। जितना बुद्धि विस्तार में फंसी हुई है, वही बंधन है, वही बोझ है। अभी संगम पर बाबा कहता, बच्चे समेटने का समय है, क्यों विस्तार कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या साथ लाए थे, क्या साथ ले जाओगे, उस विस्तार को सार में समेट लो। सेवाएं हैं करो, मना नहीं करता बाबा, जो सेवाएं हैं खूब करो, लेकिन बुद्धि नहीं फंसाओ कहीं भी। है ठीक है, कर रहा हूं, शरीर साथ दे रहा है, बुद्धि ठीक है, जो बाबा कराना चाहे तू करा ले, लेकिन मेरी सेवाएं हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये करना है। बाबा दा, जहां तेरी इच्छाएं हैं वहां ही दुख है, करावनहार करा रहा है। दादी कहती थी, ये तो प्रभु लीला चल रही है, खेल चल रहा है, खेलते चलो, कितना प्यार से खेलते, सब काम करते, हल्की रही, लाइट रही। यही स्मृति सदा रहे कि करावनहार बाबा करा रहा है, इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के मैं आत्मा कर रही हूं, मेरी जवाबदारी है, मेरी बोझ। बाबा कहता, तुम मेरे मेरे को अर्पित करो। जब तक बुद्धि को समर्पित नहीं किया है, तब तक योग की गहरी अनुभूति नहीं होती। इसलिए जहां जहां भी फेरा हो, विस्तार हो, चेक करना, और चेक करके बाबा के आगे बैठ करके, बाबा ये सब ले लो, मैं तो तेरा बच्चा हूं। जिस दिन बच्चा बन जाओगे, उस दिन सब प्रकार के माया के फेरों से बच जाओगे, योग अपने आप सहज हो जाएगा। बड़ा बन गए, बुजुर्ग बन गए, अनुभवी बन गए, उसका अहंकार आ गया तो योग नहीं लगेगा। इसलिए अगर योग की गहन अनुभूति करनी है, तो मैं बाबा आपका छोटा सा बच्चा हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी सपूत बच्चा बनकर के रहूं बस, उस दिन बाबा का बहुत प्यारा शब्द था, मैंने अंडरलाइन किया है और बार बार कहता हूं, बच्चे तुम श्रीमत के आगे जी हजूर करो, मैं हजूर तुम्हारे आगे हाजिर हूं। याद है लास्ट अव्यक्त मुरली में बाबा ने बार बार अंडरलाइन कराई, अगर कोई भी शक्ति चाहिए, कुछ भी मेरे से चाहिए, तुम श्रीमत की हर आज्ञा में जी हजूर करो। बस जिसने जी हजूर किया उसके आगे हजूर हाजिर है, बाबा को हाजिर अनुभव कर सकते हो। भाग्य विधाता वरदाता, हम सब का भाग्य बनाने वाला बाबा, और बच्चे कहें बाबा ये अनुभव नहीं होता, ये अनुभव नहीं होता, ये अनुभव नहीं होता, माना हमने उसकी श्रीमत में जी हजूर नहीं किया है। जो श्रीमत मिली अमृत वेले से रात तक, बाबा जी हजूर, मैंने आपने जो कहा है मैं हाजिर हूं, मैं वो करके देखूंगा। कैसे होगा, तो बड़ी बात है, तो नहीं हो सकता है, कई लोग फिर बहानेबाजी करते, मैं क्लास में कैसे जाऊं, मेरी ये जवाबदारी है, मेरी ये जवाबदारी है, कोई बहाना करता है, कोई आलसी बन गया। कोरोना ने कईयों को तो आलसी बना दिया, बिस्तर पर ही मुरली सुननी है, ऑनलाइन ही सुननी है। ठीक है, कोई परिस्थितियां आई, कहा गया घर में बैठ के सुन लो, अभी तक भी सोचते हैं अलबेले चल रहे हैं, ठीक है, क्लास में आते नहीं है, योग नहीं बराबर कर रहे हैं, अपने घर में ही बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, मुरली चल रही है इंटरनेट पर, टीवी पर, और अपना काम चल रहा है, बुद्धि कहीं भटक रही है, शरीर कहीं दूसरी जगह है, क्या योग है, क्या ज्ञान लगेगा। ध्यान देना, हर ब्राह्मण आत्मा के तीन शत्रु हैं, वो शत्रु छोड़ दो, पांच वाले, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, सुस्ती कुछ कमाई करने नहीं देगी आप, योग के समय सुस्ती आएगी, श्रीमत में हजूर हाजिर किया और उठ के बैठ गए और फिर अलर्ट होकर के नहीं बैठे, थोड़ी देर योग किया और फिर योग तो लगता नहीं, मजा ही नहीं आता, सो गए, आलसी, कमाई नहीं करने देता। मुरली में कई लोग, एक जगह में गया, एक भाई मेरे सामने आया, कहता भाई जी बहुत नींद आती है, मैंने कहा मुरली लिखने की आदत डालो, कहता मैं कलम लेता हूं ना डायरी पेन, तो ऐसे लिखते 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 ऐसे लंबी लकीर हो जाती है अपने आप, क्या करो मेरी नींद नहीं जाती। हमने कहा कुछ चिंतन करो, कुछ बातें अंदर अंदर करो, अंदर अंदर बाबा से रूह रिहान करो, नींद भाग जाएगी। कहते मैं तो शांत होके बैठता हूं। हमने अच्छा भोजन पर परहेज करो भाई, समय पर थोड़ा कम खाओ, हल्का खाओ, वो भी भारी करता, नींद आती है। कई विधियां हैं अपनी नींद को भगाने की, लेकिन लोग तो बस ठीक है जैसे है चल रहे हैं, कमाई से वंचित है, न योग लग रहा है, न मुरली का रस आ रहा है, न सेवाओं में इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस पर अटेंशन दो, आलस्य आपकी कमाई को छीन लेगा। और फिर अलबेले हैं, ठीक है अभी कौन बना, ये भी मैं देखता हूं, ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, बड़े भी ऐसे करते, मारती भी ऐसे करते, तो बाबा तुमको किसने ड्यूटी दी इनको देखने की, बाबा को देखो, सी फादर, फॉलो फादर, आत्माएं तो अपना अपना ढंग से चलेंगी, उनके हिसाब किताब है, उनके शरीर हैं, उनके संस्कार हैं, तुम उनसे क्यों भेंट कर रहे हो, तुम अपने आप को बनाने के लिए आए हो, अलबेला पर नहीं रखो, अलर्ट हो करके जो बाबा ने कहा उसमें जी हजूर करो। और तीसरा बहानेबाजी, चल रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा, ऐसे इस कारण से मैं मुरली में नहीं आ पाया, इस कारण से मैंने अमृत वेला मिस कर दिया, इस कारण से मैंने सेवा कारण बताने लगते, तो बाबा कहते हैं बहानेबाजी तो कलाबाजी है, इसलिए बहानेबाजी नहीं करो, अलबेलेपन में नहीं आओ, आलस्य से मुक्त रहो। योग कोई योग नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको योग योग कह के पहाड़ बना दिया, ये तो बाबा के साथ प्यार से बातें करो, रू रिहान करो और शक्ति सकाश लो, बस अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, अंतर्मुक्ता को बढ़ाओ, खुशी में रहो और सबके तुम्हारे, जितना खुशी, हल्कापन और दुआएं, इन तीन बातों में किसी ने, ब्राह्मण आत्मा ने ध्यान दिया कि मुझे सदा खुश नसीब होके खुशियों में रहना है, अच्छे अच्छे विचार करने हैं, कोई नेगेटिव बात आती है उसको नहीं चिंतन करना, उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना, खुशी की खुराक खानी है और खुश करना है सबको, बस देखो आपका योग कैसे लग जाता है। तो हल्कापन, सब जवाबदारियां अर्पित करके लाइट हो जाओ, बच्चा बन जाओ, और अच्छे अच्छे विचार करके, अच्छे चिंतन से सबको खुशी दे करके खुश रहना सीख जाओ और सबको साथ दो, सहयोग दो, समय पर मदद करो, दुआएं मिल जाएं, बैठो ऐसे योग, अनुभव नहीं होगा भटक रहे हैं हम, कहां भटकेंगे, ठिकाना एक ही है, हट्टी एक ही है, जाना सबको एक के पास ही है। तो अपने स्वधर्म में स्थित होकर के, स्वरूप को पहचान करके, अपने गुणों को अनुभव करते हुए बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ और उनकी शक्तियों को अनुभव करो। आत्मा के सातों गुणों को बढ़ाने के लिए हम योग कर रहे हैं। लक्ष्य रखो सामने कि अगर ये नहीं बढ़ रहे हैं, माना योग मेरा कहीं ठीक नहीं है, कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। कनेक्शन जुड़ा है, सब प्रकार की ठीक बैटरी है, वो चार्ज होनी चाहिए। अगर नहीं चार्ज हो रही है, वैसे के वैसे रही है, तो कनेक्शन या तो लूज या तो बैटरी खराब होगी, चेक करना। हम सब ज्ञान स्वरूप आत्माएं, ज्ञान संपन्न बन करके रहें, पवित्र स्वरूप आत्माएं, हमारी मन वचन कर्म में पवित्रता आती जाए, हमें गहन शांति का अनुभव हो, उस सच्चे प्यार का अनुभव हो, उस सच्चे सुख का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, शक्ति का अनुभव हो। ये सातों गुण 100% में जब आ जाएंगे, तब आत्मा संपूर्ण पावन बनेगी और उसकी इम्प्योरिटी खत्म हो जाएगी। योग की फाइनल रिजल्ट है आत्मा संपूर्ण शुद्ध और पावन बन जाए, और वो तभी होगा जब बाबा के साथ अब अधिक समय रहेंगे। जितना समय मिले किसी न किसी रूप में बाबा को साथी बना लो। कभी कहता है पिता के रूप में याद करो, कभी शिक्षक के रूप में उसकी शिक्षाएं याद करो, कभी सतगुरु के रूप में उसके मार्गदर्शन को देखो, कभी साथी की जरूरत है, सखा बन करके, साजन बना करके, बंधु बना करके, बेटा बना करके, जिस संबंध में आपका लगाव झुकाव ज्यादा लौकिक में है, वो अलौकिक में चेंज कर दो, और आपका अनुभव होने लगेगा सब बाबा से मुझे प्राप्तियां हो रही हैं, उनके साथ का अनुभव हो रहा है। और योग तो नेचुरल और निरंतर है, टूटेगा ही नहीं। ऐसे लगेगा करण कराओ नार करा रहा है, हम लोग नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, करा रहे हैं। करते चलो और हल्के रहो, कर्म संन्यास नहीं करो, कर्म छोड़ करके योग में नहीं बैठो। बाबा यही कहता है, कर्म योगी बन करके कर्म करो। कल बाबा ने बहुत सुंदर एक बैलेंस बताया था वरदान में, कर्म माना व्यवहार, योग माना परमार्थ। जब कर्म और योग का, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रहेगा, तो बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ब्लेसिंग्स से आत्मा बहुत आनंद का, ब्लिस का अनुभव करेगी। अगर ब्लिस का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, तो समझो मेरा बैलेंस ठीक है। कर्म और योग का अच्छा बैलेंस रख करके चलना, यही वास्तव में योग की गहराई है। मैं समझता हूं कि आप सब योग की गहराई को समझते होंगे, समझा होगा क्या करना योग। बाबा बाबा नहीं करना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अभी हम सब 5 मिनट के लिए उसी स्वरूप का अनुभव करेंगे। सब अपने लाइट माइट स्वरूप में भ्रकुटी आसन पर बैठो। मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान, इस शरीर के भान से बिल्कुल अलग एक ज्योति पुंज हूं। अपने शांत स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में स्थित होकर अनुभव करो कि मैं एक लाइट हूं, एक दिव्य शक्ति हूं, प्रकाश पुंज हूं। इस साकार जगत से दूर इन सितारों की दुनिया से भी पार। मेरा निज वतन, मूल वतन, शांति धाम मुझ आत्मा का अपना घर है। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य बाबा की, सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को समान भाव का वरदान दे रही है। अपने सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित होकर इस पूरे ग्लोब को सर्वात्माओं को प्रकृति के पांचों तत्वों को शांति की शक्ति की पवित्रता की किरणें प्रकाश के रूप में दो। ये अपने को एक चमकते हुए लाइट के शरीर में अनुभव करो। मैं अव्यक्त लाइट फरिश्ते स्वरूप में अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख हूं। ये अव्यक्त वतन बाप दादा का संगम योगी घर है। मैं आत्मा अपने आकारी स्वरूप से इस अव्यक्त वतन का सैर कर रही हूं। बाप दादा के मस्तक से निकलने वाली सर्व किरणें मैं आत्मा स्वयं में ग्रहण कर अपने फरिश्ते स्वरूप से सबको सकार दे रही हूं। चारों ओर लाइट की किरणें फैल रही हैं। दादा को साथी बनाकर इस साकार वतन में मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर रही हूं। जैसे मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य लाइट हूं, ऐसे मेरे साथ सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ बाबा कंबाइंड है। मैं उनकी सर्वशक्तियों का अनुभव कर रही हूं। शांति, ओम शांति। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे ऐसी ड्रिल साकारी सो आकारी सो निराकारी दिन में बार बार करते रहो, इससे आत्मा सशक्त बन जाएगी, देह मान समाप्त हो जाएगा। तो सभी ऐसा ही अभ्यास करते चलो और आत्मा को संपूर्ण पावन बना लो। ठीक है, ओके, ओम शांति।